से धन्यवाद, कोटि से प्रणाम है मेरी माधव सज्जनों। आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। अभी सत्संग के तुरंत बाद आज तिथि है, अखंड जाप शुरू हो जाएगा, दिन भर चलेगा, रात को भी चलेगा। कल प्रातः 7 से 8 सत्संग है, रमान जी के पाठ भजन कीर्तन के साथ इस अखंड जाप की समाप्ति होगी। जो साधक सत्संग के बाद जाप के लिए बैठना चाहें हार्दिक स्वागत है उनका। जो उठना चाहें बहुत प्रेम पूर्वक उठिएगा, ताकि जो बैठे हैं उनको किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। धन्यवाद। विवेक और वैभव की चर्चा चल रही थी। वैभव के जीवन में विवेक आ गया है। दो मित्र थे, आपको याद है ये कहानी। दो मित्र थे, विवेक दूर चला गया है, तो विवेक शून्य बुद्धि इस डिजास्ट्रस विनाशकारी। वैभव के साथ यही हुआ है। कहता है किसी ने मेरे धन को नहीं लूटा, धन ने मुझे लूट लिया है। इस अर्थ के कारण बहुत अनर्थ हुआ, जीवन में विवेक फिर आ गया है, तो जीवन की दिशा बदल गई। विवेक ने समझाया, वैभव अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये ऐसी पूंजी है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, जब जितनी इकट्ठी करो स्वाब की, इसे कोई लूट नहीं सकता, ये यहां नहीं रह सकती, आपकी है, आपके साथ परमात्मा के दरबार जाएगी। चिंता ना कर, जितनी शेष है इस पूंजी को, इसकी कमाई कर, इसको संचित कर, अर्जित कर, संचित कर, मालामाल हो जाएगा। शरीर की चिंता ना कर, इसकी हालत तो ऐसी ही है सबकी, आज नहीं कल, इसने तो बिगड़ना ही बिगड़ना है। बुढ़ापा सब पर आके रहेगा, और बुढ़ापा अपना रंग ढंग दिखाता ही है, कोई इससे बच नहीं सकता, रोग भी आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन तेरी पूंजी सुरक्षित रहेगी। ऐसी कमाई शुरू कर, वैभव ने विवेक की बात समझ ली। विवेक जो आ गया जीवन में, तो समझ बदल गई। विवेक दूर था तो बुद्धि दुर्बुद्धि हो गई, अब बुद्धि विवेक युक्त हो गई है। मित्र के रूप में विवेक जीवन में आ गया है, तो जीवन की दिशा बदल गई। वैभव वैभव नहीं रहा। गीता जी का 9वां अध्याय, गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण 29वें, 30वें एवं 31वें श्लोक में बड़ी सुंदर, बड़ी मार्मिक घोषणाएं करते हैं। कहते हैं, पार्थ, मैं संभाव से सबके हृदय में विराजमान हूं, सब में मेरा संभाव है। मानो किसी से मेरा राग नहीं, किसी से मेरा द्वेष नहीं, पर भेद केवल इतना है, जो मेरी भक्ति करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। क्या अर्थ है इसका? भगवान वैसे सब में नहीं है, यही पता लगता है ना। जो मेरी भक्ति करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। जो भक्ति नहीं करते, क्या भगवान उनके हृदय से निकल जाते हैं? नहीं, उनके हृदय में भी होते हैं। आप सोचते हो कि दुर्योधन के हृदय में या शकुनि के हृदय में भगवान नहीं थे? जो कृष्ण बाहर थे, जो अर्जुन के हृदय में थे, वह उनके थे। भगवान का अभिप्राय ये है, बड़ा गहन, जो प्रेम पूर्वक मुझे भजते हैं मैं उन्हें भजता हूं। मार्मिक बात समझो, मानो ये घोषणा कर रहे हैं यदि कोई भक्त मेरी भक्ति करता है तो उसे आश्वस्त करता हूं कि मैं उसकी भक्ति करता हूं। व्हाट एल्स, क्या चाहिए और? कितना सुंदर सौदा है। मैं उन्हें संसार में नहीं रहने देता, मैं उन्हें अपने हृदय में रख लेता हूं, बाकी संसार में भटकते रहते हैं, विचरते रहते हैं, उन्हें मैं संसार से निकल के तो अपने हृदय में रख लेता हूं जो मेरी भक्ति करते हैं। अगले ही श्लोक में फरमाते हैं, कोई अति दुराचारी भी क्यों ना, यदि एक भाव से मुझे भजता है तो वह साधु ही जानने योग्य है। क्यों? इसलिए कि उसने अपने जीवन की दिशा बदल ली है, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है अपने मन में, राम भजन के सिवा जीवन में पूर्णता और किसी साधन से नहीं आ सकती। ये उसे स्पष्ट हो गया है, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है, उसको ये बोध हो गया है, तो उसने इस पथ पर चलना शुरू कर दिया है। ऐसा धर्मात्मा, अगले श्लोक में, ऐसा धर्मात्मा परम शांति को लाभ कर लेता है। तीनों श्लोक आज जाके देख लेना और अधिक पता लगेगा। मैं तो इतना कह नहीं सकता, लेकिन उनको पढ़ने से आपको और पता लगेगा, पढ़ लीजिएगा। राम नाम की पूंछ ही जैसे वैभव को पता लग गया, अनमोल है, इसे कोई लूट नहीं सकता, इसे कोई छीन नहीं सकता, यही मेरी है, अनश्वर है, नश्वर नहीं, नाशवान नहीं है, मेरी है, मेरे पास ही रहेगी और मेरे साथ ही परमात्मा के दरबार में जाएगी। ये सारे के सारे बोध वैभव को हो गए हैं। राजा विक्रमादित्य के वक्त की बात है, जिस किसी को भी ये बोध हो गया उसके उसका जीवन बदल गया, वह वास्तव में मालामाल हो गया, अन्यथा सब कंगाल, कुछ भी बन जाओ। शास्त्र की घोषणा है साधकजनों, ये मेरा छोटा मुख ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं बोल सकता, शास्त्र की घोषणा है, यदि जिंदगी में किसी ने ये पूंजी इकट्ठी नहीं की तो वह लखपति करोड़पति होता हुआ भी कंगाल है, उसने कुछ नहीं पाया। और यदि किसी ने ये पा लिया है और उसके पास, जिसे संसार धन समझता है, भौतिक धन समझा जाता है, जितना मर्जी भी क्यों ना इकट्ठा कर लिया हो, ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वह शंशाओं का शंशा है। राजा विक्रमादित्य के वक्त की बात, एक ब्राह्मण बहुत सदाचारी है लेकिन धन से गरीब है, पढ़े लिखे हैं, भीख मांगना ब्राह्मण का काम नहीं, भिक्षा लेता है, लोग देते हैं, मांगना उसका व्यवसाय नहीं है, लेकिन दो दान के रूप में ब्राह्मण को देते हैं और ब्राह्मण को लेने का अधिकार है, लेकिन भीख मांगना नहीं। ये गलत धारणा है ब्राह्मण की कि मुझे भीख मांगने का अधिकार है, बिल्कुल नहीं, दान लेने का अधिकार है, भीख मांगने का नहीं, दोनों बातों में बहुत अंतर है। ब्राह्मण सदाचारी है एक धन से देवी निर्धन, तो निर्बल भी खाने को नहीं मिलेगा तो बल कहां से आएगा, अपनी इतनी चिंता नहीं जितनी परिवार की चिंता है। आज पत्नी ने आग्रह किया तो कहीं घर से बाहर निकले हैं कुछ आजीविका का साधन अपनाने के लिए, कुछ कमाने के लिए और घर लाने के लिए, ताकि हम अपना पेट भर सकें, चले गए। विचरते विचरते एक जंगल में पहुंचते हैं, वहां एक महात्मा बैठे हुए हैं, बड़ा आकर्षक चेहरा, ब्राह्मण आगे बढ़ ना सके, कुछ तो अच्छे संस्कार हैं ही ना, तो परमात्मा ने ब्राह्मण बनाया, उच्चतम जाति मुझे ब्राह्मण नहीं बनाया। ब्राह्मण बनना मानो बहुत से शुभ संस्कार पुण्य संस्कार होंगे पीछे कि परमेश्वर ने उन्हें ये जाति प्रदान की है, ये जाति परमात्मा द्वारा दी गई है अपनी मर्जी से नहीं। आप अपनी मर्जी से किसके घर पैदा नहीं हो सकते, परमात्मा निश्चित करता है। अच्छे संस्कार है ब्राह्मण के, अतएव आकर्षित चेहरा देखा, मनमोहक चेहरा देखा, उस संत महात्मा का शांति देने वाला चेहरा देखा, आगे बढ़ न सके, बैठ गए उन्हीं के पास, लेकिन उदास, उदासी और भी बढ़ गई। ये कितना प्रसन्न है, मैं कितना दुखी, न जाने जाति का कौन है, लेकिन संत महात्मा है, वंदनीय है, मुझे किसी प्रकार का कोई संकोच मन में नहीं लाना चाहिए, मेरे से कहीं बेहतर है। हो सकता है जाति का ब्राह्मण ना हो, लेकिन इस वक्त बहुत उच्च है ये, मैं किसी को देने योग्य नहीं, ये माला माल बैठा है, अनेकों को देने योग्य है, अनेकों को दे सकता है, वह शंशाओं का शंशा है। अंकुश कौन हो, अपना परिचय दो। ब्राह्मण ने परिचय दिया, उदास क्यों, ब्राह्मण मैं समझता हूं परमात्मा का दास, और परमात्मा का दास कभी उदास नहीं होता, उदासी किस बात की, क्या बात है, क्यों उदास हो, आपने व्यथा कही, धन का अभाव है, मेरी तो निभ गई, निभ रही है, पत्नी और बच्चों की चिंता है, वे घर में भूखे रहते हैं, इसीलिए पत्नी के आग्रह पर आज बाहर निकला हूं। पीठ पर हाथ रख, ब्राह्मण उदास ना हो जाएगा, एक चिट्ठी ले जाओ मेरी, जाके राजा साहब को दे दो, तेरी जन्म जन्मांत की कंगाली दूर हो जाएगी। चिट्ठी में लिखा था, राजन जो इच्छा तो अपनी जिंदगी में पूर्ण करना चाहता था उसकी पूर्ति का अब समय आ गया है, अपना राज्यपाट सब कुछ इस ब्राह्मण को सौंप के तो मेरे पास तत्काल आ जाओ। छोटी बात नहीं है, सब कुछ का त्याग कर देना, सब कुछ होते हुए त्याग कर देना, ये कोई छोटी मोटी जीवन की घटना नहीं है। राजा ने चिट्ठी पढ़ी, गुरु महाराज की चिट्ठी, संत महात्मा की चिट्ठी है, पढ़ के आनंद विभोर, वाह, मैं स्वयं तो वह समय निश्चित नहीं कर सकता था कि यह समय आ गया है, गुरु महाराज ने स्वयं निश्चित करके तो मुझे डेट लिख दी है, तत्काल आ जाओ। ब्राह्मण दिख रहा है ये राजपाठ इत्यादि सब कुछ त्यागने को सहर्ष तैयार है, किसी प्रकार की कोई उदासी नहीं, कोई किसी प्रकार का गिला शिकवा कोई गलानी नहीं, बल्कि इसके अंदर बड़ी उमंग है, बड़ा उतावलापन है कि मैं जल्दी से जल्दी संत महात्मा के पास ये सब कुछ त्याग के तो उनकी चरण शरण में जाऊं। ब्राह्मण है, अच्छे संस्कारों से संपन्न है, बुद्धि सोचने लगी, अवश्य इस महात्मा के पास राजपाट से कहीं अधिक कोई मूल्यवान वस्तु है जिसे पाने के लिए ये वहां जा रहा है राजा, समझ रहे हो ना, बहुत सर, राजा सब कुछ त्यागने को तैयार है, सहर्ष, ये आसान बातें नहीं है, जो राजा ने निर्णय मन ही मन ले लिया है ये कोई आम बात नहीं है। तो ब्राह्मण के मन में क्या बात दौड़ रही है, अवश्य उस महात्मा के पास इस राज्यपाट से कहीं अधिक कोई मूल्यवान है जिसे पाने के लिए राजा ये सब कुछ छोड़ के तो उसके चरण शरण में जाना चाहता है, वह क्या है, मन में प्रश्न। अतएव राजा साहब से कहा, राजा साहब, मैं फिर मिलूंगा आपको, पहले मुझे उस संत महात्मा के पास जाना है, वहां से लौट के यदि लौट सको तो फिर मिलूंगा आपको। जाके प्रणाम किया, कहा महाराज राजा साहब अपना राजपाट सब कुछ सहर्ष त्याग के आपके श्री चरणों में आने को बहुत उत्सुक हैं, उतावले हैं। मेरी एक जिज्ञासा है, क्या उस राजपाट से अधिक महत्वपूर्ण, अधिक मूल्यवान कुछ आपके पास है जो राजा आपसे पाना चाहता है उसे छोड़ के? है। तत्काल संत ने कहा हां है। वह राज क्या है? जो मेरे पास है वह तीन लोकों का राज्य भी उसके बराबर कुछ नहीं। वह क्या है? ब्राह्मण पूछता है वह क्या है? राम नाम। मेरे पास राम नाम है, मेरे पास राम नाम की पूंजी है, मेरे पास राम नाम है, तारक मंत्र है, पारक मंत्र है, पार करने वाला, तारने वाला, मोक्ष मंत्र है, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा देने वाला, ऐसी पूंजी जो कभी खर्च नहीं हो सकती, ऐसी पूंजी जिसे कोई लूट नहीं सकता, इत्यादि इत्यादि अनेक सारी बातें संत महात्मा ने गिना थी। ब्राह्मण ने झट से पांव पकड़ के कहा महात्मन क्षमा करें, मुझे यही पूंजी चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई। विवेक सत्संगति से जागृत हो गया। कितनी अनमोल चीज है दिव्य सज्जनों ये विवेक, ये हमारे जीवन में कभी दूर नहीं इसे जाना चाहिए। हर एक जीवन में हमारी बुद्धि को विवेक युक्त रहना चाहिए। तुलसीदास समझाते, अन्य संत महात्मा भी समझाते हैं, कहां से मिलेगा ये विवेक? तुलसी कहते हैं बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। कहां से मिलेगा? आपने भी सत्संग की महिमा बोली है, कहां से मिलेगा विवेक? यहां से क्या मिलता है? अनमोल चीजें। सत्संग क्यों अनमोल है? सत्संग क्यों अनपैरेलल है? इसका कोई मुकाबला नहीं है, इसकी कोई तुलना नहीं है, अतुल्य है। क्यों? जो कुछ सत्संग से मिलता है वह कहीं और से नहीं मिल सकता। विवेक बाजार की चीज नहीं है। विवेक कहां से मिलेगा? सत्संग से मिलेगा। सत्संग किससे मिलेगा, कहां से मिलेगा? जब परमेश्वर कृपा होगी तो सत्संग मिलेगा। कितने भाग्यवान हैं दिव्य सज्जनों हम सब। स्वामी जी महाराज की कितनी अपार कृपा है हमारे ऊपर। हमें वही अनमोल धन स्वामी जी महाराज ने दे रखा हुआ है, वही अनमोल नाम, मूल्यवान नाम हम सबको दे रखा है। अब सिर्फ उस कमाई को इकट्ठा करना है। हमारा अकाउंट स्वामी जी महाराज दीक्षा के वक्त परमात्मा के बैंक में खोल देते हैं आप ही के नाम। अपना नाम साथ नहीं रखते, जॉइंट अकाउंट नहीं खोलते, आप ही के नाम अपनी कमाई दे के। दीक्षा से पहले व्यक्ति खाली हाथ आता है, माला माल होके जाता है, नाम लेके जाता है, नाम की पूंजी प्राप्त करके जाता है। मानो स्वामी जी महाराज हमारा अकाउंट परमात्मा के बैंक में खोल देते हैं। अब आपकी बारी है, जितना इकट्ठा करोगे सब आपका। करिएगा इकट्ठा, खूब करिएगा इकट्ठा। इसका अर्थ ये नहीं कि वो पेट पूजा छोड़ देनी है ना। स्वामी जी महाराज कहते हैं नहीं, जितनी डट के वह कमाई करते हो जिसे पेट पूजा कहा जाता है, उतनी ही डट के साथ ही ये कमाई भी कीजिएगा जिसे भगवत पूजा कहा जाता है। इन दोनों कमाइयों का समन्वय है स्वामी जी महाराज की साधना। मुख से जपिए राम और हाथ से करिए यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। पुनः आपको याद दिला दूं, अभी अखंड जाप शुरू होने वाला है। जो जाप के लिए बैठना चाहें साधक, मेहरबानी करके बैठे रहिएगा। जो उठना चाहें बहुत प्रेमपूर्वक, बिना बैठे हुओं को डिस्टर्ब करते हुए, राम राम जपते हुए प्रस्थान करें। धन्यवाद।